2 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन के बाद आज पहली बार आंग सान सू ची ने रखा इनका दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने चिंता जताई।
We've been calling on the Myanmar government to ensure the safety and protection of civilians in Rakhine State.
Unchahar ke NTPC plant ke dhamake mein marne walon ki sankhya badhkar 26 hui.
Ambulance kareeb 1 ghante baad aayi hai wahan pe. Uske baad force chali gayi, hum logon ko andar nahi jaane diya ja raha tha ki rescue kariye. Na NTPC ka koi wahan employee tha na kuch tha. Rescue operation to formality ki gayi hai.
Karyakram mein shamil honge aapke patr bhi, lekin pehle vishwa samachar.
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा के बाद पहली बार रखाइन प्रांत का दौरा किया। इस हिंसा के बाद से करीब 6 लाख रोहिंग्या लोगों ने जान बचाकर सीमा पार बांग्लादेश में शरण ली थी। सू ची ने वहां मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मुलाकात की और लोगों से एक दूसरे से न झगड़ने की अपील की। वहां के बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस दौरे का मतलब है कि म्यांमार सरकार रखाइन संकट को हल करने के लिए तत्पर दिखना चाहती है। मैड्रिड में अभियोजकों ने हाईकोर्ट से कैटलन सरकार के 8 पूर्व सदस्यों को रिमांड पर लेने की इजाज़त मांगी है। कैटलोनिया को स्पेन से अलग करने की कोशिशों के लिए उन पर विद्रोह छेड़ने और देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। कैटलन नेता कार्लेस पुजीमोन समेत 5 नेताओं ने कानूनी समन का पालन नहीं किया है और वे बेल्जियम में हैं। पुजीमोन ने निष्पक्ष मुकदमे की गारंटी पर ही लौटने की बात कही है। मैड्रिड कोर्ट के बाहर पुजीमोंट के बाद कैटलोनिया के सर्वोच्च नेता की कुर्सी संभालने वाले आर्तुर मास ने कहा, कैटलोनिया और बाकी स्पेन के बीच विवाद संघर्ष और अदालतों से नहीं सुलझेगा। यह सही मायनों में सिर्फ राजनीति से ही सुलझ सकता है, और अगर मैं कहूँ तो नेतृत्व वाली उच्च स्तर की राजनीति की जरूरत है जिसमें समाधान खोजने की क्षमता हो। ये थे कैटलोनिया के सर्वोच्च नेता आर्तुर मास के शब्द। बाल्फोर घोषणा की 100वीं सालगिरह पर वेस्ट बैंक में फलस्तीनी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इस घोषणा के तहत ब्रिटेन ने फलस्तीनी क्षेत्र में एक यहूदी राज्य की स्थापना को अपना समर्थन दिया था। रामल्लाह शहर में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने काले झंडों के साथ ब्रिटिश कल्चरल सेंटर की ओर मार्च किया। फलस्तीनी इस घोषणा को अपनी ज़मीन छीने जाने का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इसराइल के लोग इसे अपने राज्य की स्थापना की शुरुआत मानते हैं और इसका जश्न मनाते हैं। इसराइली प्रधानमंत्री इस मौके पर लंदन में हैं, जहां उनकी ब्रिटिश समकक्ष टेरेजा मे ने उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है। इसराइल के उप विदेश मंत्री ट्सिपी होतोवली ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
For Israel, it represents the beginning of the international recognition.
यह यहूदियों के उनके ऐतिहासिक जन्मभूमि पर अधिकार की आवाज़ों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की शुरुआत थी। तभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह अनुभव किया था कि यहूदी लोग सच में इसराइल में अपना राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं, जहां से उनका हजारों साल पुराना रिश्ता है। ये थे इसराइली उप विदेश मंत्री ट्सिपी होतोवली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अपनी 10 वर्षीय भांजी से बलात्कार करने वाले 2 लोगों को भारत के चंडीगढ़ की एक अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यह मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्षीय बच्ची को स्वास्थ्य कारणों से गर्भपात की इजाज़त देने से मना कर दिया था। इसी साल अगस्त में पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया था जब लड़की के मामा का DNA बच्चे के DNA से नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस ने अदालत की अनुमति लेकर लड़की का बयान फिर से रिकॉर्ड किया था। इस बार लड़की ने अपने छोटे मामा का भी नाम लिया था। फ्रांस में कुछ कार्यकर्ताओं ने देश की शीर्ष प्रशासनिक अदालत पर संस्कृति के सोवियत न्यायकर्ता की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। अदालत ने एक शहर के प्रशासन को पोप जॉन पॉल द्वितीय की प्रतिमा से क्रॉस हटाने का आदेश दिया था। ये प्रतिमा ब्रिटनी के पुलोयरमल शहर में है। धर्मनिरपेक्ष संगठन फ्री थॉट की दलील है कि यह प्रतिमा सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक प्रतीकों की स्थापना से जुड़े 100 साल पुराने कानून की अनदेखी करती है, जबकि इसके समर्थकों का कहना है कि यह कला का नमूना है। अकेली माओं को सकारात्मक रोशनी में पेश करने पर मिस्र की एक टीवी प्रस्तोता को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अपने शो में दोवा सलाह ने पति पत्नी के रिश्ते से इतर गर्भधारण करने पर चर्चा की थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और फेसबुक पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची ने आज रखाइन का दौरा किया है। रखाइन म्यांमार का वही प्रांत है जहां से इस साल लगभग 3 महीने पहले बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन की शुरुआत हुई थी। हिंसा की वजह से रखाइन छोड़कर भागने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगभग 6 लाख बताई जाती है। इतने रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन के बाद आंग सान सू ची ने आज पहली बार रखाइन का दौरा किया है। इस बीच उनकी काफ़ी आलोचना होती रही है। आलोचना की वजह ये रही कि रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ने में म्यांमार की सेना की अहम भूमिका मानी जाती है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे रोहिंग्या मुसलमानों का सफाया करने की कोशिश बताया था और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में शरण ले रखी है, जहां संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी उनकी मदद कर रही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि जिस समय आंग सान सू ची रखाइन का दौरा कर रही थीं, उस समय भी रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन बंद नहीं हुआ था। उन्होंने बीबीसी को बताया, हम म्यांमार की सरकार से कहते आए हैं कि वो रखाइन प्रांत में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं, हमें वहाँ पहुँचने दे ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जिन्हें हमारी मदद की फौरन ज़रूरत है। हम इस बात पर भी जोर देते रहे हैं कि बांग्लादेश में शरणार्थी बने लोगों का ये अधिकार है कि वो म्यांमार वापस जा सकें, अपनी मर्जी से जा सकें और सुरक्षित तरीके से जा सकें। ये थे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की एक अधिकारी के शब्द। म्यांमार, रोहिंग्या मुसलमान और रखाइन प्रांत से संबंधित घटनाक्रम की ताज़ा जानकारी हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबर में आज इतना ही।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
दिन भर में रुख कर रहे हैं अब भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में रायबरेली का, जहां ऊंचाहार में एनटीपीसी के प्लांट में कल बॉयलर फटने के बाद आज मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इस खबर के इर्द गिर्द ऊंचाहार और उत्तर प्रदेश में आज काफी हलचल रही। पूरी जानकारी के साथ समीर आत्मज मिश्र।
बुधवार को थर्मल पावर प्लांट में जो हादसा हुआ, बड़ी संख्या में वहां जुटे स्थानीय लोग और वहां काम करने वाले उसके लिए प्लांट के कर्मचारियों और अधिकारियों को ही जिम्मेदार मान रहे थे। उनका गुस्सा सुबह से ही प्लांट के मुख्य द्वार पर दिख रहा था और किसी को भी अंदर न जाने देने की जैसे उन लोगों ने कसम खा रखी थी। लेकिन जैसे ही नेताओं का आगमन होता, गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर चढ़ जाता। इस दौरान पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आए तो कुछ ही देर बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। दिनेश शर्मा बोले, अभी पता नहीं चला है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जांच की जा रही है।
यहाँ पर जो क्योंकि एनटीपीसी की टीम आ चुकी है और रात को ही एनडीआरएफ की टीम भी आ गई थी। एनटीपीसी अपने स्तर से उसकी इंक्वायरी करेगी और जो मजिस्टेरियल जाँच का जो एक काम होता है वो जिलाधिकारी जी ने अपनी तरफ से उसको बोला है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि घटना अत्यंत दुखद थी। इसमें अभी तक लगभग 26 लोगों के मृत होने की सूचना है और इसमें 59 लोगों का भी इलाज चल रहा है।
दरअसल प्लांट के बाहर खड़े पीड़ित लोगों के तमाम परिजनों का आरोप था कि मृतकों और घायलों के सरकारी आंकड़े सही नहीं बताए जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी न तो परिजनों को और न ही मीडिया को प्लांट के अंदर जाने दिया जा रहा था। बाहर मौजूद लोग इसीलिए तमाम तरह की आशंकाएं जता रहे थे। दिनेश शर्मा के आने से कुछ ही देर पहले हमारी एक प्रत्यक्षदर्शी से बात हुई, जिनके एक परिजन की घटना में मौत भी हो चुकी थी।
एम्बुलेंस करीब एक घंटे बाद आई है वहाँ पे, उसके बाद फोर्स चली गई, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था कि रेस्क्यू करिए, ना एनटीपीसी का कोई वहाँ एम्प्लॉय था ना कुछ था। रेस्क्यू ऑपरेशन तो फॉर्मेलिटी की गई है, उसके बाद एनडीआरएफ टीम आई थी, उससे कोई मतलब, वो अभी भी मलबा आप चले जाइए ऐस उसी तरह रखी हुई है, उसी के जैसे गिरा वैसे पड़ा हुआ, ऐसे ऐसे आप खड़े होकर हाथ उठा दीजिए, इतना ऐसा है अभी वो हटा ही नहीं पूरा, उसी में भी आदमी अभी दबे होने की आशंका है।
कि वहां से सब रेस्क्यू ऑपरेशन
कुछ नहीं हुआ वहां के, तुरंत ही लाइट काट दी गई मीडिया वालों को ना, जहाँ जिसका गेट पास है उसको, किसी के जो अंदर है अंदर, जो बाहर है बाहर।
प्लांट के अंदर काम कर रहे तमाम लोगों के परिजनों के गायब होने संबंधी सवाल जब हमने डॉक्टर दिनेश शर्मा से पूछा तो उनका जवाब था,
देखिए अभी एनटीपीसी अफसर से बात होनी बाकी है, वो इस बारे में कुछ अधिकृत रूप में कह सकते
हैं। सर कई लोगों कहना मिसिंग है उनके परिवार के लोग और उनको बताया भी नहीं जा रहा है।
देखिए एनडीआरएफ की टीम ने पूरी तरीके से चेकिंग कर लिया है और कोई भी बॉडी भी, मैं खुद सबसे ऊपर तक होके आया हूँ, कहीं किसी प्रकार की कोई बॉडी अब नहीं है और एनडीआरएफ की टीम ने क्लियरेंस अपना दे दिया है।
बाहर बहुत से लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको अभी तक
जो होंगे उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे और हमारा कंट्रोल रूम काम कर रहा है।
बहरहाल दिनेश शर्मा के आने के बाद मीडिया के भी कुछ लोगों को प्लांट के गेट के अंदर तक जाने की अनुमति मिली, लेकिन घटना स्थल तक जाने की अनुमति उसके बाद भी नहीं मिली। वहां काम करने वाले कुछ अधिकारियों का दबी जुबान ये भी कहना था कि यूनिट के जिस बॉयलर में ये विस्फोट हुआ वो यूनिट अभी ठीक से चालू भी नहीं हुई थी और कुछ बड़े अधिकारियों की उसे जल्द चालू कराने की जिद के चलते ही इतना बड़ा हादसा हुआ। समीर आत्मज मिश्र, BBC, ऊंचाहार, रायबरेली।
और अब बात आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सालाना बैठक हुई। BBC संवाददाता सलमान रावी इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। मैंने आपसे कुछ देर पहले उनसे बात की और जानना चाहा इस बैठक में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
देखिए, जिस तरह का सस्पेंस बना रहा कल से ही के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसको लेकर, के जो नाराज़गी है कुमार विश्वास की, अमानतुल्लाह खान को वापस ले लिया गया निलंबन के बाद, चूंकि उन्होंने कई सवाल उठाए थे और आरोप लगाए थे कुमार विश्वास के ऊपर उसको लेकर, लेकिन वैसा कुछ सस्पेंस जो था कि कुमार विश्वास को बोलने नहीं दिया जाएगा, हालाँकि वो बातें सामने आई क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन इस बीच में कुछ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके समर्थकों ने नारेबाजी की, तो कुमार विश्वास के समर्थकों ने उनके अमानतुल्लाह खान के खिलाफ में नारेबाजी की, तो ये सारे सीन्स रहे, छिटपुट जो है ये चलते रहे। और बीच में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और सदस्यों ने कहा मनीष सिसोदिया से, चूँकि हमेशा संचालन करते थे कुमार विश्वास, तो इस बार मनीष सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री वो संचालन कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों नहीं नाम रखा गया, तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो बोल सकते हैं और आकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कुमार विश्वास ने कहा कि नहीं, चूंकि मेरा नाम इसमें नहीं है इसलिए मैं बाद में संबोधित करूंगा, पार्टी ने आज मुझे बोलने का मौका नहीं दिया तो मैं कोई बात नहीं बाद में वो करूंगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो एविडेंट नहीं हुआ कि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि पूरी तरह से बगावत के सुर पर पड़ेंगे और काफ़ी हंगामा होगा, उस तरह करेंगे, लेकिन छिटपुट जो है वो हुआ। लेकिन इस मौके पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान अपनी उपलब्धियां दिल्ली सरकार की वो गिनवाने की कोशिश की,
सी बात थी, वो तो करना ही था उन्हें अपना गुणगान,
बिल्कुल। तो उसी सिलसिले में फिर उन्होंने बताया, और मनीष सिसोदिया ने तो एक हाथ आगे जाकर कहा कि चूंकि काम करने की सहूलत में जो भारत ने 30 कदम जो आगे बढ़ाए हैं, यानी ऊपर आ गया है 100वें स्थान पर 130 से, उसका श्रेय भी मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार को ही दिया। कहा कि दिल्ली और बॉम्बे यही दो जगह हैं। आप सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा।
बिजनेस डूइंग बिजनेस का क्या मतलब है? बोला जी ये रिश्वतखोरी बंद हो जाए, मेरे लिए तो इजी है बिजनेस, बाकी मैं मेहनत कर लूंगा, मेरी टीम मेहनत कर लेगी। उसके दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर भारत की रैंकिंग 130वें स्थान से ऊपर उठ के 100वें स्थान पर पहुंची है और उसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई के बेस पे पहुंची है और पूरे भारत में किसी और शहर को शामिल नहीं किया गया, अगर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई के बेस पे पहुंची है तो आप सोच लीजिए कि आपकी सरकार का कितना योगदान है भारत का नाम रोशन करना।
तो वैसे कुल मिलाकर के 150 सदस्यों को विशेष आमंत्रण के जरिए बुलाया गया था और इस पर जोर दिया गया था कि जो चुनाव हो रहे हैं गुजरात में उसमें क्या रणनीति बनाई जाए, कितनी सीटों पे लड़ा जाए। कुछ प्रस्ताव भी आए कि हरियाणा में भी लड़ना चाहिए और मध्य प्रदेश में भी लड़ना चाहिए, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुई। लेकिन अभी जो फोकस था वो गुजरात के चुनाव को लेकर ही ज़्यादा बातचीत हुई और आपसी जो नेशनल जो काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनकी उसमें ये आपसी जो है वो उसमें ज़्यादा नज़र आए।
बीबीसी संवाददाता सलमान रावी जो दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की सालाना बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की, जहां नई विधानसभा के लिए 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जाहिर है वोटिंग से पहले राज्य में चुनावी रैलियां अपने पूरे शबाब पर हैं। इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांगड़ा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
5 प्रकार के दानव, खनन माफिया, वन माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसफर माफिया, टेंडर माफिया, ये देवभूमि को तबाह करने वाले ये 5 दानवों को खत्म करने का अवसर है।
हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली के अलावा आज और क्या सियासी हलचल रही? बढ़ती सर्दी में राजनीति कितनी गर्मा रही है, जानने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले धर्मशाला में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार से बात की।
प्रधानमंत्री की रैली की बात करें, आज उनकी 2 रैलियां हुई है हिमाचल प्रदेश में, और अभी तक जो लग रहा था कि चुनाव जैसा कुछ दिख नहीं रहा कहीं भी, वो एकदम से मोदी जी उसको गर्मा गए सारे माहौल को। तो इसी हिसाब से आज की ये रैलियां बड़ी महत्वपूर्ण होगी, खासतौर पे बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार मोदी जी ने पहली बार मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया है और भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें लपेटा है बड़ी बुरी तरह से। मजे की बात यह है कि 2 दिन पहले तक मुख्यमंत्री यहाँ जो वीरभद्र सिंह कह रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आज जिस तरीके से मोदी जी बोले और उन्होंने वीरभद्र सिंह को सीधे निशाने पे लिया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के प्रचार का रुख ही मुड़ेगा मोदी जी की 2 रैलियों के बाद।
हेमंत जी, ये जानना चाहेंगे संक्षेप में आपसे कि हिमाचल प्रदेश में चुनौती असल कांग्रेस के लिए है या भारतीय जनता पार्टी के लिए है, या चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए बराबर की है?
चुनौतियां देखिए, अभी जो मुद्दा असल में हुआ क्या है, बीजेपी ने कुछ दिन पहले अपना एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है ना। इस बारी बीजेपी ने कोई अपना अलग से थोड़ा लीक से हट के कोशिश करते हुए एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है, घोषणा पत्र नहीं किया। अच्छा, उसके बाद कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जो कि बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पे कुछ भारी पड़ता दिख रहा था हमें। आज जब मोदी आए हैं तो उन्होंने हट फिर के भ्रष्टाचार पे केंद्रित कर दिया है बीजेपी के प्रचार को, जिसे कि बीजेपी आज से मैं कहूं कि 15-20 दिन पहले तक लग रहा था कि मेन मुद्दा भ्रष्टाचार के आसपास ही रहेगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी खुद जमानत पे हैं, उनकी परिवार जमानत पे है, ईडी में मामला है, सीबीआई की रेड हुई है, बला 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 सारा। लेकिन बीजेपी ने पंडित सुखराम को पार्टी में ले लिया कुछ दिन पहले, तो लग रहा था कि ये मुद्दा शायद बड़ा ज्यादा अब नहीं उठेगा, भ्रष्टाचार वाला मुद्दा। आज की रैलियों के बाद अब ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार मेन मुद्दा, अहम मुद्दा रहने वाला है अगले 3-4 दिन, जो ये चरम पे जब चुनाव प्रचार रहेगा तो भ्रष्टाचार के आसपास ही बात रहेगी। अब दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से क्या इसका जवाब आता है, क्योंकि आज कांग्रेस की कोई बड़ी रैलियां थी नहीं हिमाचल प्रदेश में, तो देखते हैं कल परसों तक कांग्रेस इसको क्या करती है मोदी जी की आज जो सभाएं हुई है उनको लेके।
ये थे धर्मशाला से वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। आइए एक नज़र बीबीसी हिंदी के पन्ने पर। दक्षिण भारत के अभिनेता कमल हासन ने एक तमिल पत्रिका में अपने साप्ताहिक लेख में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। हासन ने लिखा है कि आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू आतंकवाद नहीं है, पहले हिंदू कट्टरपंथी बातचीत करते थे लेकिन अब वो हिंसा करते हैं। अपने लेख में कमल हासन ने ये भी कहा है कि अब सत्यमेव जयते से लोगों का भरोसा उठ गया है, सत्य की ही जीत होती है लेकिन अब ताकत की ही जीत होती है, ऐसा बन गया है, इससे लोग अमानवीय हो गए हैं। कमल हासन की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। पूरी खबर और प्रतिक्रियाओं को पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब कार्यक्रम में बारी है श्रोताओं की। श्रोताओं के पत्रों की।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ एक अरसे बाद
मैं हूँ सरोज सिंह।
सरोज सिंह, मैं इसीलिए रुक गया था कि आप अपना नाम खुद बता सकें। सरोज जी, मैं देख रहा हूँ कि एक लिफाफे से आपने चिट्ठी निकाली है।
जी, ये पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण बिहार से लिखते हैं। नाम इन्होंने अपना लिखा है उपेंद्र ठाकुर। इनका कहना है कि भले ही इस डिजिटल युग में नाना प्रकार के टीवी चैनल्स आ गए हों, लेकिन समाचार माध्यम में बीबीसी की जो विश्वसनीयता है वो अलग ही है और 100% विश्वसनीय न्यूज हम देते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये साथ ही लिखते हैं कि बहुत दिनों से रेडियो पर ये समाचार हमारा सुन नहीं पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है ये उन्होंने नहीं लिखा, बस इतना कह रहे हैं कि कुछ फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आती है।
उपेंद्र जी, एक तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चिट्ठी लिखी, समय निकाला। आपको कार्यक्रम सुनने में तकलीफ हो रही है तो अब तो बहुत सारे जरिए हैं कार्यक्रम सुनने के। आप फेसबुक से भी सुन सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे सुन सकते हैं, हमारे ऐप्स के जरिए सुन सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं, मीडियम वेव में भी और शॉर्ट वेव पर भी। कहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आ रही है, अगर आप ये लिख करके भेजें तो शायद हम मदद कर पाएं। लेकिन एक वजह और है कि जाड़े का मौसम आया है और फ्रीक्वेंसीज में कुछ बदलाव भी हुआ है, जिसकी जानकारी हम जल्दी ही आपको देंगे।
अगला खत शेख मुस्लिम का है, पचीरा रानीगंज अररिया बिहार से। ये लिखते हैं कि बीबीसी के लिए आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम का समय पर्याप्त नहीं लगता, उस पर विचार करने की आवश्यकता
जी
है।
शेख मुस्लिम साहब, आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी और आपको शिकायत हमसे ये थी कि ग्राम पचीरा हमने नहीं पढ़ा बल्कि प्रखंड का नाम ले लिया रानीगंज। मैं इनकी चिट्ठी जब पढ़ रहा था उसमें ये इन्होंने कहा है। तो जहां तक बात है समय बढ़ाने की, तो अभी तो हमारे बिल्कुल मजबूरी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम ऐसा कोई वादा आपसे नहीं कर सकते हैं कि समय बढ़ाया जाएगा। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है ये न आपको मालूम है न हमें मालूम है, तो उम्मीद रखिए।
अगला जो ईमेल है वो है कमल जोशी अल्मोड़ा से। लिखते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी गांववासी भी तेंदुओं, बंदरों, जंगली सुअरों आदि के आतंक से परेशान हैं। मुंबई में जब कुछ ऐसा होता है, दिल्ली में जब कुछ ऐसा होता है तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन इन इलाकों में ध्यान नहीं जाता।
ये कमल जोशी जी ने शायद हमारे जो संवाददाता हैं सलमान रावी, उनकी रिपोर्टें सुनने के बाद ये चिट्ठी लिखी होगी। सलमान रावी ने अभी हाथियों का जो कहर है, या कहें कि इंसानों का कहर हाथियों पर है, और मगरमच्छ जिस तरह से घरों में घुस आए हैं वो रिपोर्टिंग की थी। उत्तराखंड में सुअरों की समस्या, बंदरों की समस्या बहुत ज़बरदस्त है और कई जगहों पे है। अगर संभव हुआ तो हम इस पर चाहेंगे कि वहाँ के किसानों की समस्या भी हम रेडियो के जरिए, ऑनलाइन के जरिए पहुँचा पाएँ आप तक। लेकिन वो कब होगा इसका मैं अभी कमल जी आपको कोई भरोसा नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है और हमारे जहन में रहेगी।
अगला जो ईमेल है ये गुजरात से आया है, भरूच योगेश भोईटे लिखते हैं।
भरूच से
जी। मैं नेत्रहीन हूँ और 1990 से बीबीसी हिंदी रेडियो का कार्यक्रम सुन रहा हूँ। मुझे विवेचना कार्यक्रम बेहद पसंद है और एक उन्होंने फरमाइश भी की है, कुर्दिस्तान पर विवेचना चाहते।
कुर्दिस्तान पर विवेचना की तो बात जहाँ तक है वो रेहान साहब तय करेंगे, लेकिन कुर्दिस्तान पर हमने दुनिया जहान जो हमारा कार्यक्रम होता है हफ्तावार, उसमें एक बार या दो बार कुर्दिस्तान के मसले को उठाया था, कैसे कुर्द फाइटर्स जो हैं वो आईएसआईएस से लड़ रहे हैं। लेकिन कुर्दिस्तान की क्या समस्या है और कहां कहां फैला हुआ है, इस पर हम फिर से कभी ये कार्यक्रम कर सकते हैं।
अगला जो ईमेल है वो उमेश कुमार यादव नई दिल्ली से लिख रहे हैं। उनका कहना है, अभी अभी आपकी वेबसाइट पर रेहान भाई की एसडी बर्मन पर आलेख पढ़ा जिसमें उन्होंने लता जी और साहिर साहब से उनकी खटपट की दास्तां बताई। मैं तो रेहान भाई का मुरीद हूँ।
मुरीद तो हम भी हैं।
बहुत जानदार लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके आगे उन्होंने लिखा है कि रिसेप्शन खराब है जिस वजह से मैं कभी कभी आपका कार्यक्रम।
बस वही समस्या है जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूं। हमारे दूसरे श्रोताओं को भी अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही होगी शॉर्टवेव पे, तो जल्द ही आपको नई फ्रीक्वेंसीज हम बताएंगे, आप स्पष्ट कार्यक्रम सुन पाएंगे।
अगला जो ईमेल है वो बेहद खास है, वो इसलिए क्योंकि एक महिला लिख रही है। बहुत कम ऐसी श्रोता होती हैं जो सुनती तो सब होंगी लेकिन लिखती बहुत कम है, और उन्होंने ये लिखा भी है कि क्यों कम लिखती होंगी। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, इसलिए अपनी व्यस्तता से समय चुराते हुए मैं कभी किचन में तो कभी वर्कआउट करते हुए बीबीसी को सुनती हूँ, लेकिन जो ऐप पर वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से शुक्रिया करना चाहूंगी कविता जी का कि कम से कम आपने अपनी व्यस्तता
लिखी। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि रसोई में काम करते हुए, वर्कआउट करते हुए, दूसरे तमाम काम करते हुए आप सुनती हैं, तो लगाव आपका बीबीसी से कितना है ये हमें पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या आ रही है आपको बीबीसी के ऐप के ज़रिए सुनने में भी, ये हम अपनी लंदन वाली जो टीम है उसको बताएंगे कि ये समस्या को दुरुस्त किया जाए और लिखते रहें। समय देखिए, मुझे इशारा किया जा रहा है कम है, इसलिए चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब बात हरियाणा की उस लड़की की जिसकी उम्र है 13 साल, जो पढ़ती है बीए फर्स्ट ईयर में, और खासियत यह है कि कम से कम 8 विदेशी लहजों को बोलने में इस लड़की ने महारत हासिल कर रखी है। विस्तार से हम सुनवाएंगे कल सुबह नमस्कार भारत में ये जाह्नवी के साथ बातचीत, इसकी एक झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी।
British accent. The de facto leader of Myanmar, Aung San Suu Kyi, has been visiting the troubled state of Rakhine for the first time since 600,000 Rohingya Muslims filed a violent campaign against them. She met Muslim religious leaders who later said that she had argued people not to quarrel with each other and that the government was there to help them. American accent. The de facto leader of Myanmar, Aung San Suu Kyi, has been visiting the troubled state of Rakhine for the first time since 600,000 Rohingya Muslims fled a violent campaign against them. RP. RP has actually received a pronunciation. The de facto leader of Myanmar, Aung San Suu Kyi, has been visiting the troubled state of Rakhine for the first time since 600,000 Rohingya Muslims fled a violent campaign against them. Post. The de facto leader of Myanmar, Aung San Suu Kyi, has been visiting the troubled state of Rakhine for the first time since 600,000 Rohingya Muslims fled a violent campaign against them. She met Muslim religious leaders who later said that she had argued people not to quarrel with each other and that the government was there to help them.
हरियाणा की इस छोरी से पूरी बातचीत कल सुबह नमस्कार भारत में सुनना न भूलें। और अब खेल समाचार। खेल समाचारों के साथ सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में मौजूद हैं। बताएं खेलों की दुनिया में आज क्या हलचल हो रही है।
सबसे पहले खबर हॉकी की दुनिया से। जापान में चल रहे महिला हॉकी एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने कजाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत ने कजाकिस्तान को 7-1 से हराया। भारत के महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं ओलंपियन हरविंदर सिंह। सेमीफाइनल के लिए भारत के अलावा चीन, जापान और साउथ कोरिया की टीमों ने भी क्वालिफाई किया। कल यानी 3 नवंबर को भारत और जापान के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। अब खबर बैडमिंटन के मैदान से। भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में अब 4th स्थान से 2nd स्थान पर पहुंच गए हैं। ये मुकाम उन्होंने इस साल सुपर सीरीज के 4 खिताबों को जीतने के बाद हासिल किया। 24 साल के किदांबी श्रीकांत ने इस साल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया और ऐसा करने वाले वो भारत के एकमात्र खिलाड़ी बने। बॉक्सिंग के रिंग से ये खबर। वियतनाम के हो ची मिन शहर में खेले जा रहे महिला एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की बॉक्सर मेरी कॉम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मेरी कॉम ने लाइट फ्लाइट वेट कैटेगरी में वियतनाम की बॉक्सर डीएम टी थ्रीन क्यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। 34 वर्षीय मेरी कॉम 5 बारी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और साथ ही ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भी रही हैं। अब खबर टेनिस की। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा महिला डबल्स रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गई हैं। सोमवार को जारी रैंकिंग में वो महिला डबल्स में 3 स्थान के नुकसान के साथ 12वें पायदान पर पहुंच गईं। पिछले 5 वर्षों में ये पहला मौका है जब सानिया साल का समापन महिला डबल्स रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर रहते हुए करेंगी।
खेल समाचार सुना रही थी सूर्यांशी पांडे और ओलंपियन हरविंदर सिंह की आवाज़ किसी तकनीकी खामी की वजह से हम आप तक नहीं पहुंचा सके, इसका हमें खेद है। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
बीबीसी समाचार। म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा के बाद पहली बार रखाइन प्रांत का दौरा किया। सूची ने वहां मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मुलाकात की और लोगों से एक दूसरे से न झगड़ने की अपील की। मैड्रिड में अभियोजकों ने हाईकोर्ट से कैतलन सरकार के 8 पूर्व सदस्यों को रिमांड पर लेने की इजाजत मांगी है। बालफोर घोषणा की 100वीं सालगिरह पर वेस्ट बैंक में फलस्तीनी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इस घोषणा के तहत ब्रिटेन ने फलस्तीनी क्षेत्र में एक यहूदी राज्य की स्थापना को अपना समर्थन दिया था। अपनी 10 वर्षीय भांजी से बलात्कार करने वाले 2 को भारत के चंडीगढ़ की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फ्रांस में कुछ कार्यकर्ताओं ने देश की शीर्ष प्रशासनिक अदालत पर संस्कृति के सोवियत न्यायकर्ता की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे कुलदीप मिश्र और इस दौरान कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। ब्रजेश मिश्र फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रहे थे। दिन भर में आज इतना ही। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।